بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین، السلام علیکم. میں علی عباس رضوی، پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں فوج اور جماعت اسلامی کے درمیان لفظی بیانات کا تبادلہ. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. آپ نے خبروں میں سنا ہوگا، جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسین کی طرف سے دہشت گردوں اور خاص طور پر قتل کیے گئے حالیہ دہشت گردوں کے سرغنہ حکیم اللہ محسود کو شہید قرار دیے جانے پر درجہ حرارت پاکستان کا، جو سیاسی درجہ حرارت ہے، وہ اوپر اٹھتا جا رہا ہے. فوج نے ان کے اس بیان پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ منور حسن نے شہیدوں کی توہین کی ہے اور انہیں چاہیے کہ وہ قوم سے معافی مانگے. فوج کے اس بیان کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کے مختلف سیاسی جماعتوں نے فوج سے بھی زیادہ سخت انداز میں جماعت اسلامی سے مطالبے کر ڈالے. کسی نے کہا کہ قوم سے معافی مانگے، کسی نے یہ تک کہا کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے، کسی نے یہ کہا کہ جماعت اسلامی پر غداری اور خیانت کا مقدمہ چلنا چاہیے، کسی نے یہ کہا کہ جماعت اسلامی کو چاہیے کہ وہ منور حسن کو اپنی جماعت سے نکال باہر کرے. دوسری طرف جماعت اسلامی کی مجلس شورا کا جو اجلاس ہوا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا، اس کے بعد جو بیان دیا گیا وہ یہ کہ فوج کو سیاست میں مداخلت سے باز رہنا چاہیے، فوج کا حق یہ نہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کرے. بہرحال جماعت اسلامی نے اور نہ ہی جماعت اسلامی کے امیر نے اس بیان پر معافی مانگی، اور نہ ہی معافی مانگنے کے لیے اب تک وہ تیار نظر آ رہی، جبکہ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ مطالبہ طول اور تیز ہوتا جا رہا ہے. اس موضوع پر گفتگو ہوگی، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
پاکستان میں امریکی ڈرون حملے میں حکیم اللہ محسود کی ہلاکت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مارے جانے والے فوجیوں کے متعلق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کے بیان پر پاکستان کی سیاست میں شہادت کی مذہبی بحث چھڑ گئی ہے. امیر جماعت سید منور حسن کے بیان پر پاکستانی فوج اور پاکستانی سیاسی رہنماؤں کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے، جبکہ امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی اپنے اس موقف پر قائم ہیں کہ حکیم اللہ محسود شہید ہے، جبکہ امریکی مقصد کے لیے طالبان سے لڑائی میں مارے جانے والے پاکستانی فوجی شہید نہیں ہیں. فوج کے ترجمان نے ان کے اس بیان کی مذمت کرتے ہوئے اسے غیر ذمہ دارانہ، گمراہ کن، سیاسی مفاد کے لیے نئی منطق ایجاد کرنے کی کوشش اور دہشت گردی کے دوران ہزاروں پاکستانی شہریوں اور فوجیوں کی شہادت کی توہین قرار دیا ہے. فوج کے بیان کے بعد جماعت اسلامی پاکستان نے اس بیان کو سیاسی قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے. جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ فوج کو سیاسی معاملات میں مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے. پاکستان کے متعدد سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے دونوں رہنماؤں کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی فوج اور معصوم شہریوں کے قاتل کو شہید قرار دینا پوری قوم کی توہین کے مترادف ہے. بعض حلقوں کی جانب سے جماعت اسلامی کے سربراہ کے خلاف ملک سے غداری کے الزام میں مقدمہ چلائے جانے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ سنی اتحاد کونسل نے کہا ہے کہ حکیم اللہ محسود شہید نہیں، قاتل اور مجرم ہے. مفتیان کرام سنی اتحاد کونسل کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق حکیم اللہ محسود کو شہید قرار دینا قرآن و سنت کے منافی ہے. ڈرون حملے بدترین ظلم، غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر انسانی ہیں. ڈرون حملوں میں جاں بحق معصوم اور بے گناہ خواتین، بچے اور مرد شہید ہیں. ماہرین کے مطابق پاکستان میں امیر جماعت اسلامی کے بیان کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس میں ڈرون حملوں کی مخالفت، معصوم شہریوں اور فوجیوں کی ہلاکت پر سیاستدانوں میں افسوس سے زیادہ سیاسی موقع پرستی کی علامتیں زیادہ نمایاں طور پر نظر آتی ہیں، اور بہت سے حلقے اس پورے معاملے کو فوج اور عوام کی نظروں میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں. تجزیہ نگاروں کے خیال میں پاکستانی نہیں بلکہ کچھ دیگر ممالک میں بھی جس طرح سے شدت پسندوں کو کچھ خاص مذہبی حلقوں کی جانب سے حمایت حاصل ہے، اس کے نتیجے میں جہاد و شہادت جیسے خالص مذہبی مفاہیم کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال حیرت انگیز نہیں ہے. تجزیہ نگاروں کے خیال میں سارا مسئلہ دہشت گردی اور شدت پسندی کے سلسلے میں دوہرے معیار کا ہے. اس وقت عالم اسلام میں ایسے بہت سے مفتی ہیں جو جہاد اور شہادت کی سند تقسیم کرتے نظر آتے ہیں، اور اس پر پاکستان یا کسی بھی اسلامی ملک میں کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آتا. جب تک جہاد اور شہادت کے تعین کے لیے صحیح اسلامی معیاروں کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا، تب تک مختلف مواقع پر مختلف علاقوں اور ملکوں میں شہادت و جہاد و دین اور حقیقی شہیدوں کے توہین کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس صورت میں اگر نجس العین جانور کو بھی شہید قرار دیا جائے تو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔
جناب جناب سیدھے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار اور دانشور ثاقب اکبر صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ثاقب اکبر صاحب، پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت منور حسن صاحب کے بیان کے بعد ایک بار پھر اوپر اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ منور حسن صاحب کو معافی مانگنی چاہیے، جبکہ جماعت اسلامی نے اس کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوج کو سیاست میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ کون حق پر ہے، کس کی بات زیادہ معتبر ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے بڑا مشکل آپ نے سوال کر دیا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے سیناریو میں اور اس سارے پس منظر میں، کہ ہمیں کہیں ٹھیس نہ لگ جائے، آپ گینوں کو بھی ذرا ملحوظ بھی رکھنا ہے، اور اتفاق، اتحاد اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا بھی یہاں پہ مسئلہ ہے کہ اس کو بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا منور حسن صاحب نے جو نقطۂ نظر اختیار کیا، مجموعی طور پہ جو سابق میں ان کے سابق امیر جماعت اسلامی رہے ہیں ان سے مجھے ذرا سا مختلف دکھائی دیتا ہے، چونکہ میں ان کو دیکھتا رہا ہوں، ان کے بیانات بھی سنتا رہا ہوں، اور اس پر جو خود حکیم اللہ محسود کا جو تبصرہ ہوا ہے وہ بھی میرے پیش نظر ہے۔ انہوں نے یہ جو پاکستان کی تحریک طالبان ہے، ان کے جو کام انہوں نے پاکستان کے اندر کیے ہیں، جو دہشت گردانہ کاروائیاں کی ہیں، اس کو انہوں نے فساد قرار دیا ہے، جبکہ جو طالبان وہاں پہ امریکہ کے جو آکوپیشن ہے افغانستان میں، ان کے خلاف جو کام کر رہے تھے اس کو انہوں نے جہاد قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ظاہر ہے اگر یہ فساد ہے تو فسادیوں کو روکنا اور پھر صورتحال ساری تبدیل ہو جاتی، یعنی وہ نقطۂ نظر جو ہمارے نہایت ہی محترم جناب سید منور حسن نے پیش کیا ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں ذرا سا مختلف ہے۔ اس کو ذرا ٹھیک ہے انہوں نے سوال کے انداز سے اٹھایا ہے، لیکن بیٹھ کے ٹھنڈے دل و دماغ سے اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکیم اللہ محسود نے بہت زیادہ سخت مذمت کی قاضی حسین احمد کے اس پوائنٹ آف ویو کی، انہوں نے کہا آپ وطن پرست ہو گئے ہیں، آپ اسلام اور امت کا آپ نے کہا مشن جو ہے اس کو گویا ترک کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو، یعنی قاضی حسین احمد کو انہوں نے مرتد کہا، انہوں نے اپنا حکیم اللہ محسود نے ان کو کافر کہا، اور پھر یہ بہت سارے فرقہ وارانہ مسائل بھی انہوں نے کہا کہ آپ شیعوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اس بات پر اعتراض کرتے ہوئے حکیم اللہ محسود نے وہ آیت پڑھی جس میں کہا گیا لا تتخذ الیہود والنصارہ، تو یہ اولیاء کہ ان کو آپس میں، یعنی یہود و نصارہ کو اپنا جو ہے اولیاء اور سرپرست نہ بناؤ، گویا وہ، یعنی اس طرح سے وہ تکفیری اپنا جو منہج اور میں اس کو بالکل کھلے بندوں حکیم اللہ محسود نے اس کو اناؤنس کیا۔ پھر اس کے بعد آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، کہ اتحاد بین المسلمین کی کوششوں کے نتیجے میں جو اور ان کی جد و جہد کے نتیجے میں یہ اپنا تحریک طالبان قاضی حسین احمد کے بہت خلاف ہو گئی، اور انہوں نے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، ان کی یعنی وفات کے چند ہی ہفتے پہلے ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ تو اب یہ دیکھنا، یہی وجہ ہے میرا خیال ہے کہ جب فوج نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی کا جو اسلام کے لیے خدمات ہیں اس کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ اب یہ مشکل خاصی خود جماعت اسلامی کے جو ہم دو تین دن سے جو ان کے رہنماؤں کے بیانات سن رہے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کو بھی ایک مشکل پیش آ رہی ہے۔ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا، ایک تو وہ ہے نا جو جماعت اسلامی کا جو اجلاس ہوا ہے، مشاورتی اجلاس ہوا ہے، یا میں واضح کروں کہ ان کی شورا کا اجلاس نہیں ہوا، ان کی ایک مشاورتی اجلاس ہوا ہے منتخب افراد کا شاید اس کو آپ کہہ سکتے ہوں شاید مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا ہے تو اس میں اس مسئلے کو انہوں نے کنسیڈر کیا اور جو بیان انہوں نے سرکاری طور پہ جاری کیا ہے وہ وہی ہے جس کی طرف آپ نے
بہت شکریہ میں پھر حاضر ہوں گا ثاقب اکبر صاحب
کیا گیا وہ ان کے سیکرٹری جنرل نے ایک طرح کا اس مسئلے کو کہا کہ فوج جو ہے اس میں انٹروین نہ کرے یہ سیاسی موضوع ہے میرا خیال ہے مسئلہ فقط سیاسی ہوتا تو شاید اتنا پوری اپنا پاکستان کے مختلف حلقوں میں یوں اس مسئلے کو زیر بحث نہ آتا سیاسی مذہبی جماعتوں نے سارے سب مسئلے کو اٹھایا ہے یہاں پہ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں قرارداد مقاصد منظور ہو گئی تو مولانا ابوالعلیٰ مودودی نے اس کو کہا کہ یہ ریاست نے اسلام قبول کر لیا یہ اسلامی ریاست ہے انہوں نے اس کو اسلامی کہا اور ہمیشہ جماعت اسلامی اس میں پھر اس کے بعد انتخابات میں حصہ لیتی رہی اس میں شریک ہوتی رہی گویا اس کے آئین کو انہوں نے کہا اسلامی ہے 62-63 کی دفعات پہ ہمیشہ قاضی صاحب مرحوم نے زور دیا وہ اس آئین کو اسلامی کہتے رہے اس ریاست کو اسلامی کہتے رہے اب اس ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے جو قوتیں جو ہے سرگرم عمل ہیں ان کے بارے میں اب بہت
کلیئر بہت شکریہ آپ کا
کرنا چاہیے کیونکہ تحریک طالبان تو اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اس ریاست کی حیثیت کو تسلیم کرنے کے تیار نہیں ہے ان کا وہی ایجنڈا ہے جو القاعدہ کا عالمی سطح پر ایجنڈا ہے
میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں
باقی مسائل کو الگ الگ بیان کر
جی اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں لاہور سے غالباً جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی رہنما جناب عبدالغفار عزیز صاحب السلام علیکم جناب
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
بہت شکریہ غفار عزیز صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ابھی جیسے کہ ہمارے مہمان اسلام آباد اسٹیڈیم فرما رہے تھے کہ جماعت اسلامی پاکستان موجودہ جو حکومت ہے یعنی 1947 کے بعد سے جو پاکستان کی حکومت مہاراج وجود میں آئی ہے اس کو اسلامی حکومت تسلیم کرتی ہے اور 62-63 کا جو شق ہے اس پر جیسا کہ ابھی ہمارے مہمان کہہ رہے تھے کہ جماعت اسلامی خاص طور پر زور دیتی رہی ہے اور جو جماعت یا جو گروپ یا جو گروہ اس اسلامی حکومت کو تسلیم نہ کرے اور اسے کافرانہ نظام کہے اس کی حمایت کرنا کتنا مناسب ہوگا آپ کے خیال میں
جی بہت شکریہ میں آپ کے محترم مہمان اور اپنے عزیز دوست کی پوری بات تو نہیں سن سکا لیکن میرا نے خیال انہوں نے اسلامی حکومت کی بات کی ہوگی شاید اسلامی ریاست یا اسلامی دستور کی آپ
جی اسلامی ریاست جی
یقیناً جی ہاں بالکل یہ اسلامی ریاست اور اسلامی دستور سید ابوالعلیٰ مودودی نے اس ریاست کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ ریاست جب وجود میں آ گئی ہے اور اسلام کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے تو اس کی حیثیت ایک مسجد کی سی ہے اور اس مسجد کا جو مقام اور اس کا جو احترام ہوتا ہے تو ہمیں اب جیسے قائد اعظم نے بھی کہا کہ ہم اسلام کو بنانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے مسلسل جد و جہد جاری ہے قرارداد مقاصد بھی اور بھی پورے دوسرے تمام شکر ہیں لیکن یہ الگ بحث ہے آپ نے جو سوال اٹھایا یقیناً بہت اہم سوال ہے پاکستان کا یہ کہنا اس ریاست کو تسلیم نہ کرنا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کا ہم سے ان سے اختلاف ہے خود برا یعنی کہ آپ اگر ان کے طریقہ کار کو دیکھیں اگر وہ قوت کے ذریعے سے یا بندوق کے ذریعے سے کہیں پہ تبدیلی لانے کو وہ ان کا اعتقاد ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا یہ راستہ نہیں ہے نہ ہی ہمارا یہ طریقہ کار ہے ہاں البتہ افغانستان میں جو لوگ جو بھی مزاحمتی قوتیں جن میں سر فہرست تحریک طالبان افغانستان آتی ہے ہم امریکی موجودگی اور اس امریکی استعمار کے مقابلے میں مکمل اور بھرپور حمایت کرتے ہیں ان کے اس جہاد کی اور ان کی اس جدوجہد کی ان کی اس مزاحمت کی اور میرا خیال ہے کہ شاید اس پر عالم اسلام میں بہت کم اختلاف پایا جاتا ہے البتہ پاکستان میں جو اس وقت بحث چل نکلی ہے بدقسمتی سے وہ بھی اس اصل فوکل ایشو کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے دو صحافیوں نے اپنی مرضی ایک نے تو چلیے ایک جملہ نکلوا بھی لیا کہلوا بھی لیا لیکن دوسرے نے تو وہ جملہ بھی جو چاہتا تھا وہ نہیں کہلوا سکا لیکن پھر اس کے بعد اپنے الفاظ سید منور حسن صاحب کی منہ میں دیتے ہوئے اس پر پوری ایک میڈیا وار اور جماعت کا ایک میڈیا ٹرائل شروع کر دیا گیا اور پھر مزید پر تمام بیانات تو اور بھی بہت سارے موجود ہیں خود مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان دیکھیں تو انتہائی متنازع
चाहे मुझे और आपको भी उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो मीडिया ट्रायल और इस तरह बॉस के एक मोहतरम की तरफ से इस तरह की एक
जी हाँ बज़ाहिर ऐसा है कि हमारी आवाज़ यानी जो टेलीफोनी आवाज़ थी वो मुनक़ता हो गई है या कोई मुश्किल पेश आ गई है। गफ़ार अजीज़ साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुने, आपकी आवाज़ हम तक आना बंद हो गई है, तो मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इस वक्त चलते हैं लंदन स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं बैन अलाक़वामी उमूर के तज़ज़ियनिगार जनाब डॉक्टर एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है और फ़ौज ने कहा है कि ये शहदा की तौहीन है, तो फ़ौज के इस बयान को आप किस तनाज़ुब से लेते हैं?
देखिए, ये आपका जो आज मौजू आपने उठाया है, इस पे पिछले एक हफ्ते से सैकड़ों टेलीविज़न प्रोग्राम किए जा चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और सैकड़ों जो है प्रिंट मीडिया ने उस पर आर्टिकल्स भी लिखे हैं, और अभी बहस ये जारी है। इस वक्त देखा जाए तो ये सबसे बड़ा टॉपिक फॉर डिस्कशन बना हुआ है वर्ल्ड मीडिया पे इस वक्त, स्पेशली पाकिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक जो इससे कंसर्न है। मैं थोड़ा सा आगाज़ करता हूँ, एक खूबसूरत शेर मेरे जहन में आया है कि इस मौजू के बारे में, कि जिंदगी इतनी गनीमत तो नहीं जिसके लिए अहद कम ज़र्फ़ की हर बात गवारा कर लें। इंसान अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए बसा औकात ये कुछ भी कर जाता है जिस पर कुरान मजीद ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुलबिसुल हक्का बिल बातिल व अंतुम तअलमून, कि कभी भी बातिल और हक को आपस में मिलाओ ना, और ये तुम जानते हो कि मिला रहे होते हो जब तुम। तो मैं इनका जो बयान है, दो बयान, एक हम अगर फजलुर रहमान साहब का बयान अगर मुनव्वर हसन साहब के बयान से जुदा करके करेंगे तो वो भी सही नहीं होगा। ये दोनों एक ही तरह के लगभग, जिनका मकसद, जिनका मतलब और जिनका माना जो है वो एक ही लिया जाना चाहिए। इस वक्त इन दो बयानों ने खासी तौर पर पाकिस्तान में और बाकी दीगर ममालिक में बसने वाले मुसलमान जो हैं, जो अमन के मुतलाशी हैं, जो अमन से मोहब्बत करते हैं और जंग के खिलाफ हैं, उनके जो हैं जज्बात को बड़ा मजरूह किया इन दो बयानात ने, दो सियासी और मजहबी जो रहनुमाओं ने दिए हैं पिछले चंद दिनों में। मैं बताऊं, ये इस वक्त टाइमिंग देखिए, जब उन्होंने ये बयानात दोनों ने दिए हैं, तो छह निकात आपके सामने जल्दी जल्दी मैं रखता हूं। सबसे पहले आप देखिए, ये बयान मुनव्वर हसन साहब ने और फजल रहमान साहब ने उस वक्त दिए हैं जबकि, देखिए, अभी पाक फौज के सीनियर लीडरशिप जो है, अभी दो माह पहले ही जनरल मेजर जनरल सनाउल्ला न्याजी जो है वो सवात के जीओसी थे, उनकी शहादत हुई अपने छह बाकी साथियों के साथ, और इसी तरह से दो पिछले दो बरसों में बहुत से ब्रिगेडियर्स, बहुत से कर्नल्स, मेजर्स और बेशुमार जो हैं वो सिपाही फौज के जो हैं, जो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो हैं, वो बेचारे शहीद हुए हैं, उनके जख्म अभी ताज़ा ही हैं। ये उस बेवा से पूछिए, मेजर जनरल सनाउल्ला न्याजी की बेवा से पूछिए कि शहादत क्या होती है, उन छोटे छोटे यतीम बच्चों से पूछिए जो आज बेचारे अपने बाप को याद करके, वो अभी उन्होंने 40वां उसका किया होगा, तो पूछिए शहादत होती क्या है। तो एक तो देखिए कि अभी वो जख्म ताज़ा थे, और उस इस सूरत हाल में ऐसे बयान दे देना, तो एक ये मैं कहूँगा बयान इतफाली बच्चों के बयानात की तरह से है, इसमें ना कोई बालीदगी नज़र आती है सियासी, ना इन बयानों से कोई आकिल या बालग नज़र आता है, बल्कि बचगाना ये बयानात हैं। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि अभी देखिए कि हाल ही में कोशिशें जारी हैं कि शाम के बहरान को हल करने के लिए बैन अक्वामी ताकतें जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जो सीरियन अपोजिशन अलायंस जो कोलिशन है वो मिल के आके बैठे और डिस्कशन करके सीरिया के ऊपर जो है अवाम वहाँ पे अमन लेके आए। साथ ही देखिए तीसरी चीज़ जो इसी पिछले एक हफ्ते में हुई है, ईरान का पुरअमन जौहरी प्रोग्राम जो डिस्कस हुआ है तीन रोज जिनीवा में, और तमाम जो है P5 यानी परमानेंट 5 जो मेंबर्स है UN सिक्योरिटी काउंसिल के और जर्मनी के साथ, उन्होंने डिस्कशन की और वो भी जारी था। उसके साथ देखिए कि अब मैं आपको बताता चलूं कि ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने तो कोई इतने वाजे अल्फाज में यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले माह कोई ड्रोन अटैक के बंद कराने के लिए कोई ऐसी बातचीत नहीं की थी, और ये हकीकत है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं, ये एक नई न्यूज़ होगी आपके लिए, कि US स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन में, CIA में, FBI में और नेशनल सिक्योरिटी, इन पांच डिपार्टमेंट्स में इस वक्त सबसे बड़ा टॉपिक ये चल रहा है कि डिस्कशन के लिए जो एपिस्टेमिक ग्रुप जो है उसको लाया जा चुका है कि आप इस पे देखें कि हम अल्टरनेटिवली ड्रोन अटैक को किस तरह रुकवा सकते हैं, या जिसके बारे में जो रिजेंटमेंट पाई जा रही है लोगों में जो मुस्लिम दुनिया में नहीं है गैर मुस्लिम दुनिया में भी है, वो तो कैसे इसको एड्रेस किया जाए। तो उस पर बातचीत शुरू होगी पिछले हफ्ते से, और हम देखेंगे कि अगले एक दो हफ्तों में इस पर कोई ना कोई चीज सामने हमारे आएगी। ये भी बहस चल रही है इस वक्त। और फिर देखिए कि अमेरिका और नेटो अफवाज जो हैं इनके बारे में जो इनखला हो रहा है अगले साल उसके बारे में भी कॉन्टैक्ट ग्रुप जो है पेंटागन में स्टेट डिपार्टमेंट में वो बैठा हुआ है, 40 के करीब लोग इस पर डिस्कशन आजकल कर रहे हैं कि अगले 6 माह के अंदर क्या वो इस तरह के लाहे अमल इख्तियार करेंगे कि सितंबर अक्टूबर में जब ये विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा तो क्या उसके लिए क्या मसाइल होंगे और किस तरह से उसको उसका स्मूथ विड्रॉल जो किया जाए। और फिर देखिए कि सबसे बढ़ के देखिए कि अभी 6 रोज कबल पाकिस्तान में मुहर्रम अल हराम शुरू हुआ है, और आप ये देख लीजिए कि ये जो तालिबान हैं या अलकायदा के लोग हैं इनके सबसे बड़े जो शिकार जो हैं इनके सबसे जो मजलूम जो लोग जिनको ये आसानी से जिन पे ऊपर अटैक करते हैं वो हैं पाकिस्तान की शिया कम्युनिटी और उनके साथ मोहब्बत करने वाली पाकिस्तान की हनफी और सुन्नी कम्युनिटी जो है जो उनके साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आज शरीक हैं। तो ये एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट होगा। तो आज अगर कोई हकीमुल्ला मसूद को शहीद कह दे तो फिर मैं पीछे चला जाऊंगा कि देखिए वला तुलबिसुल हक्का बिल बातिल व अंतुम तालमून को जहन में रखते हुए देखिए ये ऐसे ही नजर आता है मुझे कि जिस तरह अबू सुफियान को आज से 1400 बरस कबल लोगों ने रजील्ला कह दिया सहाबी बना दिया, तो क्या आप पूछिए अबू सुफियान के मानने वालों से या अबू सुफियान से कि फिर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अनहो के शहादत का क्या होगा, या वो जो सैकड़ों शहदाए बद्रो ओहद खंदक थे जो अबू सुफियान और अबू सुफियान के हवारियों के हाथों में शहीद हुए, तो आया वो भी शहीद हो गए, और अगर और साथ आपने अबू सुफियान को भी रजी अल्लाह कह दिया फिर माविया को भी रजी अल्लाह बना दिया आपने। तो ये बहस बहुत पुरानी है, इस बहस को आज निहायत बच्चों की सी जहनीत के साथ फजलुर रहमान
बहुत शुक्रिया मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में।
मुनव्वर हसन साहब ने जी इसका आगाज कर दिया,
बहुत शुक्रिया आपका साकिब। हाँ गफार अजीज साहब माफ कीजिएगा कि टेलीफोन लाइन जो है वो कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुनव्वर हसन साहब से ज़बरदस्ती ये कहलवाया गया था कि उनके ज़बान से ये जुमला निकल गया, और अगर ज़बरदस्ती कहलवाया गया था तो क्या मौजूदा सूरत हाल में जब पाकिस्तान एक मुश्किल हालात से यानी दहशतगर्दी की तनाजुर में बात कर रहा हूँ गुजर रहा है, तो क्या वो अपने इस बयान की तरदीद नहीं कर सकते?
नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जबरदस्ती कहलवा लिया गया, जबरदस्ती तो आज की दुनिया में कौन कहलवा,
जबरदस्ती से मुराद यानी दौरान गुफ्तगू कुछ इस तरह से
आपकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो रहा, मैं इस दौरान में ड्रॉप हो गई कॉल और मुझे नहीं मालूम अभी जो आपके साथ मेहमान थे। देखिए हम अगर बात कर रहे हैं इत्तेहाद उम्मत की और खास तौर पे इन मखसूस दिन, तो मेरा नहीं ख्याल है कि जिन बहसों को ये चंद मिनट की गुफ्तगू में आपके मुअज्जज हम छेड़ रहे थे, इस तरह की बहस कर हम कोई इत्तेहाद उम्मत पैदा कर सकते हैं? कौन सहाबी है कौन नहीं है ये तो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और इसको अगर हम यहाँ पे इत्तेहाद उम्मत की आप तमाम देरे बहस ले आए के कोई भी हम इस पर गुफ्तगू कर सकेंगे। अलबत्ता जो इशू आपने पाकिस्तान के बारे में कहा है, मैं ये अर्ज करता कि वो सहाफी ने अपनी मर्जी की एक सहाफी मर्जी की एक बात कहलवा ली, दूसरे ने अपनी मर्जी की वो बात कहलवाने में ना
जी। बहरहाल हम बहुत ही अफसोस समय है कि एक बार फिर हमारी गुफ्तगु मुनक़ता हो गई, सिलसिले कलाम मुनक़ता हो गया गफ़ार अजीज़ साहब से। साकिब अकबर साहब जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी हमारे मेहमान ने इशारा किया, खुद गफ़ार अजीज़ साहब ने जो जमात इस्लामी के रहनुमा उन्होंने भी इशारा किया कि ये इस तरह की बातें सिर्फ जमात इस्लामी के रहनुमा ने तो नहीं कहीं, दीगर मजहबी रहनुमा मीन जुमला फजलुर रहमान साहब ने भी कहीं, ये तो खुद इस वक्त सिर्फ जमात इस्लामी या मुनव्वर हसन साहब को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है जबकि फजलुर रहमान साहब ने ऐसे ही कुछ मिलती जुलती बातें की, जाहिर है आपको बेहतर पता है, तो ऐसा क्यों है?
अपना मैं ज़रा सा जो आपके मोहतरम मेहमान हैं इंग्लैंड वाले, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो ज़रा सा मतलब ऐसे इश्यूज जो इख्तलाफ जिनसे पैदा हो सकता है तारीखी हवाले से, उससे इज्तनाब करें, और आज के मौजू पर मेरा ख़्याल है हमें जो आपने रखा है मौजू, इस पर हमें बात करनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात कह दूँ कि सारी मुश्किल जो इस वक्त पैदा हो गई है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यानी बात को जो है ना, जिसकी वजह से कंफ्यूज हो जाती है, वो अमेरिका का मामलात के अंदर दखील होना है यानी, और पाकिस्तान चूँकि एक अरसे से बहुत सारे यानी अमेरिका की पाकिस्तान के फौज के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान के इक्तसाद के अंदर अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट चूँकि बहुत ज़्यादा है, और इस अफगानिस्तान वाले मसले में और दहशतगर्दी वाले मसले में इसमें कोई शक नहीं है कि साबिक फौजी आमिर ने अमेरिका की जो है वो एमा पर पाकिस्तान को इस जंग में जो है वो झोंक दिया, और अभी तक यानी उस हम मखमसे में और उस मुश्किल में फंसे हुए हैं। चूँकि बीच में अमेरिका का नाम आ जाता है तो सारे के सारे वो लोग जो बाकी मामलात को फिर बीच में जो है ना वो गड़मड़ कर देते हैं। इस मौके पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है हमारी फ़ौज के लिए भी और हमारे सियासतदानों के लिए भी कि वो एक आज़ाद रियासत बनने की तरफ आएँ, यानी अमेरिका की डिक्टेशन से बाहर निकलें। और ये जो इस वक्त ये पाकिस्तानी तालिबान जिनको हम कहते हैं, ये दहशतगर्द जिसको हम कहते हैं, यानी उनके हाथ में भी जो सबसे बड़ा हथियार है वो यही है कि मामलात के अंदर अमरीका इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान को बहुत खुलकर, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की फौज को एक आज़ाद रियासत होने का जो है उसकी तरफ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। फिर ये बहुत सारे जो सादा लोग हैं ना, उनको फिर गुमराह नहीं किया जा सकेगा। एक तो मेरा ख्याल है इस सारे मसले में ये बहुत ही अहम नुक्ता है। दूसरी बात ये, आपने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान बहुत जीरक, बहुत समझदार सियासतदान हैं। एक मजहबी रहनुमा होने के साथ साथ उनकी सियासत के अंदर उनकी जीरकी और जहानत को सब खराज तहसीन पेश करते हैं। आप उनके जुमले पे गौर व फिक्र करें आप, कि उन्होंने कहा कि अमेरिका अगर कुत्ते को भी मारेगा तो वो हम उसको शहीद कहेंगे। अब आप देख लें वो किसको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और किसकी तारीफ़ कर रहे हैं, और मेरी पहली बात की तायद होती है, क्योंकि बीच में अमेरिका का नाम आ जाता है तो लिहाजा सारा मसला जो है वो उस तरफ चला जाता है। अब हमें वापस इस तरफ आना चाहिए कि जब पाकिस्तान को हम एक मानते हैं, इसके दस्तूर को हम तस्लीम करते हैं, इस आयन को तस्लीम करते हैं, इसको एक इस्लामिक स्टेट के तौर पे तस्लीम करते हैं, तो वो लोग जो इन बुनियादी अकदार वैल्यूज़ बिलीव्स इसको इनकार कर देते हैं, मेरा ख्याल है उनके लिए और फिर उसके बाद इसको ख़त्म करने के दरपे होते हैं, उनके लिए हमें एक बहुत क्लियर कट नुक्ता नज़र रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बातचीत ना करें, मैं ये कहता हूं कि आप यही समझ के ये क्लियर हो के बात करें कि आपका स्टैंड क्या है। जैसा कि बाद हमारे यहाँ सियासी जमातों ने ये बात की भी है कि पाकिस्तान के आइन जो है ना वो बालादस्त रहेगा, पाकिस्तान की रियासत के मफादात जो हैं वो बालादस्त रहेंगे, इस बात को बहुत कैटेगोरिकली कहना भी चाहिए। मैं दो दिन से तीन दिन से जमात इस्लामी के रहनुमाओं की बहुत उम्दा उन्होंने यानी इस डिफेंस में आके जो पिछली तारीख को भी बयान किया है वो बड़ी, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में हमने पाकिस्तान की फ़ौज का साथ दिया है, और इस मसले में जब पहले सोवियत यूनियन के मसले पे पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया उस वक़्त भी फ़ौज का और रियासती इदारों का साथ दिया, कश्मीर के मसले पर आज तक हमने इस रियासती इदारों का साथ दिया है। बल्कि ये भी मेरे इल्म में है कि जब ये जनरल नियाज़ी, मेजर जनरल नियाज़ी पिछले दिनों शहीद हुए हैं तो जमात इस्लामी का एक बाकायदा सरकारी सतह पर एक वफद जनरल नियाज़ी के घर गया है ताज़ियत के लिए, और सैयद मुनव्वर हसन ने एक ताज़ियती बयान जारी किया है जिसमें उनको शहीद करार दिया गया। मेरा ख्याल है अब इस मसले को उन्हें क्लियर कहना चाहिए कि मैंने सवाल उठाया है लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है, वो उन्हें कहना चाहिए कि चूंकि अमेरिका का बीच में हाथ है इसलिए इसको हम कन्फ्यूज लोग जो हैं इस वजह से कन्फ्यूज़ होते हैं, वरना जहाँ रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ और पाकिस्तान की जो सालमियत है उसकी हिफाजत के लिए जो हमारे रियासती इदारे जद्दोजहद कर रहे हैं हम उनकी हमायत करते हैं। मेरा ख्याल है कि वो जो काजी हुसैन अहमद साहब की लाइन थी फसाद उन्होंने इनको मुफसिद करार दिया है, इन इनके जो इन्होंने किया है पाकिस्तान के अवाम के साथ और बाकी सारे यानी पाकिस्तान की फौज के साथ और नहायत ही अहम पाकिस्तान की तनसीबात को जो इन्होंने नुकसान पहुँचाया है, इस पर मेरा ख्याल है बहुत क्लियर कट एक नुक्ता नज़र आना चाहिए। सिर्फ ये बेशक वो अपना फौज को मुखातब करार ना दें, वो हुकूमत को मुखातब करार दें, लेकिन मामले को क्लियर करें और ख़त्म करें। फौज ने भी इस मसले पे अभी तक उसके बाद से खामोशी इख्तियार की है और मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत को इस मसले में एक अपना रोल प्ले करके इस मसले को अब ख़त्म करना चाहिए। जमात इस्लामी को हम ओवरऑल पाकिस्तान की एक वफादार खैरखा और पाकिस्तान की एक वतन दोस्त एक हम जमात भी समझते हैं, उसकी लीडरशिप को भी इस तरह से समझते हैं और अगर लफ्ज़ों में कुछ आगे पीछे हो गया है तो मेरा ख्याल है इस मसले को ज़ेब दास्तान के लिए बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। डॉक्टर एजाज साहब, जब फ़ौज ने यह बयान दिया कि माफ़ी मांगे और जमात इस्लामी ने कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे और दीगर जो सियासी जमातें उनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस जमात के ख़िलाफ़ आज खुद नोटिस लें, तो क्या ये समझ रहे हैं कि आप अब जबकि सियासी जमातें मुख्तलिफ और फ़ौज जमात इस्लामी के इस बयान पर शदीद बरहमी और नाराज़गी का इज़हार करें तो क्या इस जमात पर कोई प्रेशर पड़ेगा और खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज खुद नोटिस लेने की पोजीशन में होंगे?
देखिए, हर चीज़ हम बड़ी आसानी से उठा के कह देते हैं कि चीफ जस्टिस से रुजू कर लें। चीफ जस्टिस जो हैं अब एग्जिट डोर पे खड़े हैं, चंद हफ्ते बाद वो खुदा हाफिज कर रहे होंगे। हर चीज़ पे वो नोटिस सो मोटो नहीं लेंगे, कौम को खुद भी देखना है। पार्टी के अपने जो रैंक्स हैं, पार्टी में एक बंदा जो कह देता है इस तरह के बयान दे देता है कॉन्ट्रोवर्शियल, तो पार्टी में एक नेक्स्ट टेयर जो होता है एडवाइजर का, इमीडिएटली जो डेप्यूटीज होते हैं, जो एड्स होते हैं पार्टी के, वो पार्टी हेड को कहते हैं कि आपने सबसे पहले तो पार्टी हेड को जो स्क्रिप्ट देते हैं ना, उसी में ख्याल रखा जाना चाहिए कि कौन से अल्फाज ऐसे हैं जिसके इस्तेमाल करने से आप आवाम के, आप सुनने वालों के, लोगों के जज्बात को मजरूह कर सकते हैं। तो उन 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 अल्फाज को हजफ कर लिया जाता है अपने टेक्स्ट में से, अपने स्क्रिप्ट में से। तो ये मतलब इस तरह का बयान दिए जाना उजलत में, ये बचगाना तरीके से जो दिया जा चुका है, ये होना ही नहीं चाहिए था सबसे पहले। और अगर हो चुका है तो कहते हैं कि मतलब अगर आप माफ़ी भी नहीं मानते तो अपने वापस अपना बयान ले लीजिए। जहाँ तक साहब ने इस्लामाबाद से कहा, तो मैं आपको बताता चलूं कि एक डिक्टेटर ने ये साइन किया ड्रोन का, ये सारा कुछ किया, तो देखिए उसने साइन किया था, गलत किया था उसने, सन 2003 में 2004 में उसने किया, गलत किया। लेकिन उस डिक्टेटर को जो दिफा दे रहे थे, जो सपोर्ट कर रहे थे उस इस डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ताकि ड्रोन जहां लेजिटिमेट हो जाए, तो वो भी वही सियासतदान थे। उनमें से अभी भी 35 से 40 ऐसे हैं जो कि प्रेजेंट असेंबली में भी वो लेजिस्लेटर्स हैं पाकिस्तान में, और उनमें से 7 ऐसे हैं जो कि मिनिस्टर्स हैं आजकल, आज फिर भी। तो ये देख लीजिए कि हाँ, अगर आपने कहा कि गलत है, तो 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, तो 2008 में उनको जब फारग किया, सितंबर 2008 में मुशर्रफ साहब को, तो अक्टूबर में सबसे पहले इसको उठाते और कहते कि जी ये हमने सॉवरन एक जो साइन किया है यूएस गवर्नमेंट के साथ ड्रोन को अलाउ करने के लिए, ये हम खत्म करते हैं, यूनिलैटरली हम खत्म करते हैं, तो ये कर देते। लेकिन जब नहीं कर सके तो ये गलती इनकी भी है, इसमें मुशर्रफ को आप जो पूरी तरह जो है वो दोष मत दीजिए। खुद भी देखिए कि 5 बरस में 5.5 बरस में आपने ऐसा काम कौन सा किया जो रिवर्स किया जो आपने मुशर्रफ के खिलाफ। तो दूसरी चीज ये है फजल रहमान साहब के बारे में, फजल रहमान साहब एक सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फजल रहमान साहब जो है वो पिछले कोई एक बरस में बड़े परेशान हैं, उनके अपना जो सियासी कद जो है, सियासी पोजीशन डाइल्यूट हो रही है, इसलिए कि कतर में तालिबान के बारे में जो मुजाकरात होने थे उसमें एक टाइम पे वो फ्रंट लाइन एलाई हो गए थे, लेकिन उनको सऊदी अरब की तरफ से, सऊदी अरब की इंटेलिजेंस जो है उसके हेड जो हैं प्रिंस बेंदर बिन सुल्तान, उन्होंने फजल रहमान को पिछले कुछ 6 माह से लिफ्ट करानी खत्म कर दिए। उसके साथ अमेरिकन ने भी उसको जो है वो नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया फजल रहमान साहब को। अब फजल रहमान साहब चंद हफ्ते पहले वो अमेरिकन एम्बेसडर रिचर्ड ऑल्सन से मिले भी थे और अपनी पोजीशन को चाह भी रहे थे कि बेहतर हो जाए, कोई बार्गेनिंग पोजीशन उनकी बेहतर हो जाए। तो फजल रहमान साहब एक तरफ तो अमेरिकन एम्बेसडर से भी मिलते हैं और फिर जब उमरा करने जाते हैं तो बहुत से अमेरिकन दीगर लोगों को भी रियाद में मिलते हैं, कतर में मिलते हैं, दुबई में मिलते हैं फजल रहमान साहब। अभी रिसेंटली 4 अमेरिकन जो लीडिंग फिगर हैं जो CIA के हैं, जो स्टेशन चीफ है, उनसे फजल रहमान साहब की ढाई माह पहले दुबई के जब विजिट पे वो थे, उनकी मुलाकात हुई है। तो फजल रहमान साहब एक तरफ तो अमेरिकन जो है वो ऑफिशियल से मिलते भी हैं और फिर कहते हैं कि अगर तुम किसी कुत्ते को भी मारोगे हम उसको शहीद करेंगे। तो एक फजल रहमान साहब जैसा एक मैच्योर, एक समझदार, एक देखे एक रहनुमा होने के नाते इस तरह की बचगाना जो है वो स्टेटमेंट नहीं देता। तो ये है कि या तो देखिए आप यूनाइटेड स्टेट्स से वीजे मांगना खत्म कर दें, यूनाइटेड स्टेट्स को कहें कि आपके किसी भी पीस या अमन का जो है आप इनिशिएटिव है हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, बायकॉट करें यूनाइटेड स्टेट्स का, उनसे मिलिए भी ना, ना अम्बेसडर से मिलिए, ना उनके ऑफिशियल से आप दुबई में या रियाद में मिलिए। तो फिर तो कहेंगे हाँ एक बहादुर जरूरतमंदाना फैसला एक लिया है जो अमेरिकन से मिल ही नहीं रहे। लेकिन एक तरफ आप पब्लिक को बताते हैं कि अमेरिकन किसी को मारेंगे और वो हर कोई शहीद होगा, इवन के कुत्ता भी शहीद होगा, तो फिर दूसरी तरफ अमेरिकन से मिलते भी हैं। तो ये एक जो है ये बड़ी पैराडॉक्सिकल पोजीशन है, डायबोलिकल है ऑन द पार्ट ऑफ फजलुर रहमान साहब। तो मैं फजलुर रहमान साहब को पूरा मुर्दे इल्ज़ाम ठहराऊंगा कि वो भी थोड़ा मेच्योरिटी का इजहार करें। उन्होंने अभी एक वो एक साहब अपना एडवाइजर तो लिया है जो यूनाइटेड स्टेट्स में काम करता रहा है, जो बॉल्ड हेड है, तो उससे थोड़ा बहुत कहें कि होमवर्क थोड़ा और किया करें, इस तरह के बयान देने से पहले वो होमवर्क कर लिया करें।
बहुत शुक्रिया आपका। साकिब अकबर साहब, जमात इस्लामी की तरफ से बयान आया ड्रोन हमले के, ड्रोन हमले बहुत ही बुनियादी और अहम मसाइल में से एक है, उस पर हुकूमत को और फौज को तवज्जो देनी चाहिए और इस तरह के बयानात पे इस तरह से रद्दअमल का इजहार नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तान में एक बड़ा हलका ये है, उसका ये कहना है कि ड्रोन हमले वजह तौर पर एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान की सालिमियत, इकतदार आला और उसकी अर्जी सालिमियत के ताल्लुक से और जो लोगों की जानें ज़ाय हो रही हैं उसके एतबार से। लेकिन ड्रोन हमले को मसला बनाकर या उसको आड़ बनाकर किसी दहशतगर्द को और दहशतगर्द के सरगना को शहीद तो नहीं कहा जा सकता, तो ये जो तबसरा है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
मेरा ख्याल है वही मुश्किल है जिसकी तरफ मैंने पहले भी इशारा किया है। ड्रोन हमले की तो पाकिस्तान की मुमकिन है अंदर कोई हमदर्दी भी थोड़ी बहुत अमरीकियों से रखते हों या उनकी समझते हों कि ड्रोन हमलों से कोई फ़ायदे भी हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सॉवरेंटी और पाकिस्तान की हाकमियत आला का चूँकि इसमें की वायलेशन है, तो पाकिस्तान की जो ऑन बोर्ड जो सारी ज़ाहिरन सारी पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की असम्बली, कौमी असम्बली है और पार्लियामेंट पूरी, उनका नुक्ता नज़र यही है कि ये गलत है और इसको जो है वो अमरीका जो है इस पे इसको इस सिलसिले को ख़त्म करे। ये गुज़श्ता हुकूमत भी कहती चली आ रही है, अब भी ये कहती है। अब ये कि इसको रोकने के लिए क्या इकदाम किया जाना चाहिए, जाहिर है कि ये हुकूमत का फ़ैसला है और उसी को करना चाहिए। मेरे ख्याल में कि इसको रोकने के लिए कोई डेडलाइन गवर्नमेंट को जो है वो देनी चाहिए ताकि फिर आगे फौज जो है उस सिलसिले में अपना कोई कदम उठाए, ज़रूर कोई डेडलाइन जो है इसका और कोई रास्ता जो है इसको मुतय्यन करना चाहिए। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं कि इसके बाद फिर दहशतगर्दों को जो है इस वजह से जो है कि ड्रोन हमले चूँकि उनके इलाकों में होते हैं जहाँ पे उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उस वजह से उनको कोई रियायत मिल जानी चाहिए। ड्रोन हमले तो अमेरिका करता है, लेकिन ये कि पाकिस्तान के आवाम का क्या कसूर है, मस्जिदों में नमाजियों का क्या कसूर है, गिरजे में गरीब बेचारे मसीहियों और ईसाइयों का क्या कसूर है, इमाम बारगाह में शियों का क्या कसूर है? मतलब ये कि ड्रोन हमला तो अमरीका करता है तो आप बदला अमरीका से लें, फिर ये कि आवाम जो हैं वो तो ज़ाहिर है ड्रोन हमलों के मुखालिफ हैं, पाकिस्तान में तमाम मसालिक के लोग जो हैं उनका इत्तफाक है कि ये अमेरिका, एक तो ये इत्तफाक है इस पर कि पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क हो, इस पर इत्तफाक है कि ड्रोन हमलों का सिलसिला जो है वो बंद होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि इसके बाद जब वो बदला अमेरिका से लेने के लिए का नाम लेते हैं तो वो बदला इन बेचारे मजलूम महरूम और निहत्ते आवाम से लेते हैं और इस मसले को जो है वो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अमेरिका की मुखालफत, अमेरिका जो जुल्म करता है वो उसको अलग, और ये जो पाकिस्तान के आवाम के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं और पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर करते हैं, इनके मसले को अलग जो है वो देखा जाना चाहिए।
जी आखिरी सवाल भी आप ही से करना चाहूँगा साकिब अकबर साहब, अभी आपने इससे पहले वाले सवाल के जवाब में फरमाया था कि फ़ौज ने जो बयान दिया था उसके बाद उसने कोई बयान नहीं दिया, तो क्या ये समझा जाए कि अब फ़ौज की तरफ से खामोशी अख्तियार कर ली और उसे जो कुछ कहना था उसने कह दिया, लेकिन जो हुकूमत की मुखालिफ सियासी जमातें या बाज़ ऐसी जमातें जो हुकूमत का साथ भी दे रही हैं बाहर से अंदर से रहते हुए, उन लोगों ने सब ने एक आवाज़ होकर जमात इस्लामी के खिलाफ जो है बयान दिए, और किसी ने कहा है कि गद्दार करार दिया जाए, किसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुद नोटिस लिया जाना चाहिए। तो फौज अब जबकि खामोश हो गई, तो क्या अब सियासी सतह पर सियासी जमातों की तरफ से यह मसला ऐसे ही चलता रहेगा या अनकरीब ख़त्म हो जाएगा आपके ख्याल में?
मेरा ख्याल है इस पर कई लोगों के अपने अपने हिसाबात हैं। एक ये कि बाज़ पार्टियों ने इस पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया, खामोशी इख्तियार की है। बाज़ ने बयानात दिए हैं लेकिन ज़रा सा रियायत की है दोनों तरफ को। बाज़ ने बहुत खुल के उनके इस से मुनव्वर हसन के बयान की मजम्मत की है। बाज़ ने फिर उसको और आगे हार्डलाइनर्स हैं इस मसले में जिन्होंने कहा है कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। मेरा ख्याल है इनके पुराने भी हिसाबात हैं, जिनकी पुरानी सियासी मुखालफतें हैं कराची के अंदर या मतलब फ्रंटियर के अंदर, जो इनके अपोनेंट जमातें रही हैं हमेशा बिलमुकाबिल, उनका रद्द अमल बिल्कुल और है। और जो जिनके साथ मिल के जमात इस्लामी आज भी काम कर रही है या माजी में मिल के हुकूमत में या सियासत में शरीक रही है, उनका बिल्कुल और रद्द अमल है। और जहाँ तक मजहबी जमातों का ताल्लुक है, जिनके मुख्तलिफ ग्रुप्स में जमात इस्लामी जो है वो पार्ट एंड पार्शल अभी तक मौजूद है या अलाइंसिस में मौजूद है, उनका तर्ज अमल निस्बतन मुख्तलिफ है सिवाय एक दो मजहबी जमातों के जिन्होंने बहुत सख्त हार्ड लाइन ली है। अच्छा, बाज ने जमात इस्लामी की मजम्मत करने के बजाय फौज के बयानात की जो है वो तायीद का रास्ता इख्तियार किया है। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी आप ये कहें कि सब ने मिल के एक की तरीक़ेकार इख्तियार किया है, इस तरह से नहीं है ये। और दूसरा ये कि मीडिया को तो चूँकि इश्यूज़ उसको चाहिए होते हैं ना, वो उन्होंने इस मसले को बहुत ज़्यादा और ऊपर उठा लिया है। इस मसले को उस तरफ ले जाना चाहिए जो जमात इस्लामी के कई अकाबिर ने अपने बयानात इंटरव्यूज़ में अपनी पुरानी वजाहतें अपने रिकॉर्ड अपनी चीज़ें फौज के साथ उनकी एफिलेशंस और उनका पहले मिलके काम करना, और ये गोया एक तरह से यानी उनका लिए सॉफ्ट कॉर्नर का जो उन्होंने इजहार किया है, और उसको मेरा ख्याल है कबूल करना चाहिए और उसको इसी तरफ आगे की तरफ आना चाहिए।
बहुत शुक्रिया।
ताकि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जैसे वो पहले रही है उसी तरह रहे। मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत ज़रूर आइंदा जमात इस्लामी की मोहतरम क्यादत जो है वो इस मसले पे तवज्जो ज़रूर करेगी।
बहुत शुक्रिया
के अंदर भी जो अभी मुशावरती इजलास में भी।
बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू को मुलाहिज़ा फरमाया। बहरहाल एक ऐसे वक्त जब पाकिस्तान को एक हसास मरहले का सामना है, ड्रोन है और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, तो ऐसे में अकाबरीन अमायरीन सियासी जमातों मजहबी जमातों और उनके रहनुमाओं को बहरहाल अपने इकदाम और अपने बयान से पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान में आमन इस्तेहकाम की तकवीत के लिए आगे आना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।